ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इसे वर्तमान सदी में मानवता के लिए कोड लिखने वाली एक निर्णायक शक्ति बताया है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एआई किसी भी पिछली महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के विपरीत है, जिसके लिए शासन के लिए वैश्विक दायित्वपूर्ण और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कृषि में क्रांति लाकर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को तेज और अधिक प्रभावी बनाकर लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एआई की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने, जन केंद्रित अनुप्रयोग बनाने और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में सभी को एआई के लाभ सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।
I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. It should be more inclusive of the global south and its priorities, concerns and needs.
प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत 10वें स्थान से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज भारत यूनानी पद्धति में शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल और दवाओं के निर्माण के मामले में दुनिया में अग्रणी स्थान रखता है। आज शाम नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज यूनान और मध्य एशिया के देशों में यूनानी चिकित्सा पद्धति का उतना उपयोग नहीं होता जितना भारत में होता है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि यूनानी प्रणाली से जुड़े शोधकर्ता और चिकित्सक आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी के उपयोगी पहलुओं को अपना रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि सरकार 99% उधार का उपयोग पूंजीगत व्यय और पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावी पूंजीगत व्यय 4.3% है और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% है। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि सरकार प्रभावी पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण और पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए सभी उधार संसाधनों का उपयोग कर रही है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। इससे पहले चर्चा में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने विकसित भारत विजन और किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी कोई भी रूपरेखा नहीं होने का आरोप सरकार पर लगाया। इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी ने कहा कि देश महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान देकर तीव्र विकास कर रहा है। लोकसभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में आज आम बजट 2025-26 पर फिर से चर्चा शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के भागवत कराड़ ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण राजकोषीय घाटा 0.4% तक कम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लीकेज को रोकने में सहायक साबित हुआ है। चर्चा के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में देश विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। माघी पूर्णिमा पर कल होने वाले अमृत स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के मुकुंद शशिकुमार दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। आज उन्होंने पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में फ्रांस के साशा गुएमार्ड वेनबर्ग को हराया। अगले दौर में कल उनका सामना बेल्जियम के माइकल ग्रेट से होगा। उन्हें चेकिया के डालिबोर स्वचीना ने हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।